Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
शुभ संध्या, नमस्कार, अभिवादन. आप जुड़ गए हैं मार्केट मंत्र से, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरों पर चर्चा करने वाले हैं. तो श्रोताओं, क्योंकि आज शनिवार है और आज हम आपके प्रश्नों को भी सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे. सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं. ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. दिल्ली से जो भी बाहर के श्रोता इन नंबरों से हैं, वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. श्रोताओं, आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर, कार्यक्रम में आपका श्रोताओं की तरफ से, मेरे और राजेश की तरफ से भी बहुत बहुत अभिनंदन.
आप दोनों को नमस्कार और तमाम श्रोताओं का अभिनंदन.
चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
ईरान वंस अगेन शट्स द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन रिस्पॉन्स टू अ यूएस ब्लॉकेड ऑन ईरानियन शिपिंग एंड पोर्ट्स. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस रैप्स अप वीक विद गेन्स. सेंसेक्स एंड निफ्टी जंप्स ओवर 1.2%. एंड मेजर यूएस स्टॉक इंडिसेस कंटिन्यू टू हिट रिकॉर्ड हाइज एज इन्वेस्टर्स सी ईजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस.
ईरान ने घोषणा की है कि अमरीकी नाकाबंदी के जवाब में हॉर्मुज जल डमरू मध्य एक बार फिर प्रभावी रूप से ईरान द्वारा बंद कर दिया गया है. भारतीय शेयर बाजार में इस सप्ताह प्रमुख शेयर सूचकांकों में बढ़त दर्ज की गई. सेंसेक्स और निफ्टी में 1% से अधिक की वृद्धि हुई और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने के कारण अमरीका के प्रमुख शेयर सूचकांकों में लगातार रिकॉर्ड स्तर की तेजी देखी गई.
Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. We move on to the first headline story. Iran has announced that the Strait of Hormuz is effectively shut once again in response to a U.S. blockade on Iranian shipping and ports. Iran's Joint Military Command today said that control of Strait of Hormuz has returned to its previous state under strict management and control of the armed forces. It warned that it would continue to block transit through the strait as long as the U.S. blockade of Iranian ports remained in effect. On the other hand, the U.S. Central Command, CENTCOM, has stated that American forces are enforcing a naval blockade of Iranian ports, adding that 23 vessels have complied with their orders to turn around. Now, very important for us to figure out, Shishir, what is going to be the state of affairs going forward. Yesterday it was closed, today it was opened, again it is shut. What is happening?
This is a classic case of seesaw game, what we have played during our childhood, that in the morning you listen about that, okay, now it's open. In the afternoon you come to know that it's closed now. And maybe, say, late evening, when there will be hours is starting. Of course, it's a weekend in U.S. So we may have some announcement from U.S. also late in the evening. So it's very, very difficult to find a kind of situation where we are seeing. And nobody is willing to what we can say, say that, okay, we are ready to accept your thing. Everybody has its own way of dealing with this. Iran has its own way. U.S. has its own way. So it's really challenging and tough time.
Yeah, the news that just come in just before the Strait of Hormuz was shut, and an Indian ship has just crossed the Hormuz
But there was also news that two of the Indian ships were asked to turn back. So that is what I'm saying, that too many informations are there. And unfortunately, in Iran, there is a blockade of internet also. So what is actually happening inside the country, or what is happening, or what kind of regulations or what kind of announcement are made by Iranian administration is difficult to know. Whatsoever we are getting from the various Iranian media, and of course one of the official media of Iran. So it's really tough time, let me tell you.
So we will see volatility in coming weeks,
of course,
if this continues.
Of course, this Monday we were very hopeful of some kind of more positivity in the stock market, and crude prices are going down. But now it seems that market will again see a complete volatility on Monday.
शिशिर लौटेंगे और सारे सवालों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर, लेकिन अभी उससे पहले हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोग्राम में, इन्हें शामिल किया जाए. इनका नाम है अमित और ये जुड़ गए हैं मुंबई से.
मैडम नमस्कार.
नमस्कार.
एक्सपर्ट से मेरा सवाल ये है कि नए इनकम टैक्स अभी जो ये आया है तो उसमें मुझे पूछना है कि किसी व्यक्ति ने 50 साल यदि आईटीआर फाइल नहीं किया होगा, इनकम टैक्स फाइल नहीं किया होगा, तो ऐसे समय अभी वो फाइल करता है तो उन्होंने कौन सा स्लैब चुनना चाहिए, फर्स्ट पहला वाला नया या पुराना, और वो चलता है क्या? अभी इतने साल नहीं किया और अभी करेंगे तो उसमें कुछ क्वेरी नहीं आती है, क्योंकि और इनकम सपोज है 9 to 10 lakh ईयरली, तो कौन सा स्लैब एक करना चाहिए? प्लीज आपका एडवाइस में चाहिए. थैंक यू. मैं रेडियो पे.
अमित देखिए, जो सालों से नहीं किया अगर आप अभी करते हैं और इस बीच में आपके पास अगर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कोई नोटिस नहीं सर्व हुआ है, क्योंकि आज के समय में क्या है कि जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शनल रिपोर्ट, उसमें क्या होता है कि आप एक निश्चित सीमा से ज्यादा खर्च करते हैं या कहीं पे भी आप निवेश करते हैं, बैंक में रखते हैं, वहां से वो सूचना आयकर विभाग को जाती है. अब अगर आयकर विभाग ने अभी तक आपको नहीं भेजा है तो इसका मतलब है कि जितनी आपकी बातों से और जो मैं समझ पा रहा हूं कि अभी तक ऐसी कोई परेशानी नहीं, तो बिल्कुल रिटर्न दाखिल करिए. अब दूसरा जो आपका सवाल है कि क्या नए में जाना चाहिए पुराने में जाना चाहिए, दो बातों पर निर्भर करता है. आपने कहा कि आय 8 से 9 लाख रुपए तक का है और नए स्लैब में 12,75,000 अगर सैलरीड हैं, और वैसे अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो भी 12,75,000 रुपए तक का आपको फायदा होता है, यानी कि वहां तक अगर आपकी सालाना आय है तो आपको एक रुपया भी आयकर नहीं देना है. ध्यान रखिए, मैं शब्द जो इस्तेमाल कर रहा हूं, सालाना आय अगर है, अगर आपकी आय 12,75,000 से ज्यादा है तो इनकम टैक्स का मीटर चालू हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, चाहे वो आप न्यू में है. अगर पुराने में अगर आप बात करते हैं तो 2.5 लाख रुपए तक की जो थ्रेशोल्ड सीमा है वहां पर आपको वहां के बाद इनकम टैक्स की होती है, लेकिन वहां पर भी लगभग 7 लाख रुपए तक का किसी न किसी तरीके से बेनिफिट मिल जाता है. तो मुझे लगता है कि आपके लिए अगर आपने कहीं कोई निवेश नहीं किया है टैक्स बचाने के लिए, तो आपके लिए नई कर की व्यवस्था को अपनाना बेहतर होगा.
Shishir, it is either which way, mandatory on the parts of everyone to file their returns?
No, there are two conditions. Either you are crossing the threshold in terms of income tax slab, or you are doing some specified transactions which are reported to income tax department. Then in both these situations, you need to file that. And another important thing is that if you have to take any refund, suppose that you have been paid some amount by contractual work and they have deducted TDS, but you are not supposed to be part of the income tax slab. In that situation,
you need to file
the return to get the refund.
Okay.
So these are the conditions under which you have to file the return, but that is not a mandatory part on each and every individual earning some money to file the income tax return.
ऐसे ही बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें शिशिर जी से मिलती रहेगी. अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं. इनका नाम है अमित झा और ये दिल्ली से हैं. अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
मैडम आपको भी नमस्कार. मैडम आपके बोलने का अंदाज बड़ा निराला है. सीना सर
जी,
हेलो
जी,
आपसे मेरा प्रश्न ये सर कि अभी तो एक सवाल राजेश सर ने पूछ ही लिया, राजेश लेख सर ने हॉर्मुज के बारे में पूछना था. तो सर ये आए दिन जैसे मॉर्निंग में ईरान कहता है ये ओपन कर दिया हमने जी, शाम को कहते थे हमने ब्लॉक कर दिया जी, एक बात ये है क्या ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है? सर एक सवाल महत्वपूर्ण ये है सर कि हालिया दिनों में जो रैली चली है तो रैली में ऑलमोस्ट सारे सेक्टर के स्टॉक्स ने परफॉर्म कराया, ठीक है सर, बट आवाज आ रही है सर?
हाँ आप बोलिए, सुन रहे हैं।
बट एक पर्टिकुलर सेक्टर की आईटी की दिग्गज कंपनी है निफ्टी 50 कंपनी, नाम तो नहीं लेना है प्रोग्राम में जैसे कि ये है, तो एक आईटी कंपनी है सर और एक बैंकिंग की कंपनी है और एक मतलब सिगरेट उगरेट बनाने वाली कंपनी है लाइक, ठीक है सर, तो ये सारे अपने ईयर एंड पे मतलब 40% 50% अभी भी माइनस में चल रहे हैं कंपेयर टू दिसंबर लास्ट 31 दिसंबर से और मार्च एंड तक अभी अप्रैल तक का देखा जाए तो सर मैं यही पूछना चाह रहा हूँ क्या इन सब कंपनियों में लेना अभी सही टाइम है या रुकना चाहिए, क्योंकि सर इसने बिल्कुल मार्केट से उलट परफॉर्मेंस करा है।
देखिए अमित जी, क्या है कि किसी कंपनी विशेष में निवेश के बारे में तो हम चर्चा नहीं करते, हम सेक्टर के बारे में जरूर बात करते हैं और आईटी सेक्टर में संभावनाएं काफी बेहतर है, बैंकिंग में काफी अच्छी संभावनाएं हैं, फार्मास्यूटिकल में संभावनाएं काफी अच्छी और डिफेंस सेक्टर में, तो ये चार ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें संभावनाएं बेहतर हैं। एक और बात महत्वपूर्ण है कि अगर कोई भी चुनिंदा स्टॉक, कोई भी चुनिंदा कंपनी अगर अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर पर है या उसमें थोड़ा बहुत सुधार भी हुआ है तो भी उसमें गिरावट है तो आपको किस्तों में खरीदना चाहिए। देखिए वैल्यू स्टॉक को अगर आप किस्तों में खरीदते हैं तो ये आपके लिए एक लंबे समय का निवेश हो सकता है। रोज रोज शेयर के भाव को देख करके आप अपने खरीद और बिक्री का फैसला करते हैं तो फिर उसके लिए इस तरह के स्टॉक्स नहीं है, उनको हम ट्रेडिंग स्टॉक्स कहते हैं, वो अलग ही तरह की कैटेगरी होती है। आप तय कर लीजिए कि कितने समय के लिए करना है और इस समय में कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको हम लोग वैल्यू बाइंग कहते हैं, वो एक अच्छी कीमत पर उपलब्ध है, किस्तों में खरीदिए। मार्केट में जब भी डिप आ रहा हो एक छोटा सा इंस्टॉलमेंट आप मार्केट में लगा दीजिए, वो आपके लिए एक बेहतर रणनीति होगी।
फ्रॉम दिल्ली वी आर जॉइंड इन बाय रवि, अ वार्म वेलकम रवि, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
नमस्कार सर।
नमस्कार,
थोड़ा ऊंचा बोलेंगे प्लीज।
जैसे मेरे को ये जानना है सर, प्री ओपनिंग में जैसे कोई ऑर्डर लगाते हैं, 1000 रुपए का एक ऑर्डर लगाया हमने तो 1000 से नीचे खुला तो ऑर्डर लग जाता है या नहीं?
देखिए प्री ओपनिंग में सामान्य जो हमारे निवेशक हैं या जो सामान्य खरीदार या विक्रेता हैं उनके लिए वो नहीं है, वो ट्रेडिंग ट्रेडर्स के लिए हैं। तो आप वहां पर आप निवेश के लिए कोई फैसला लेते हैं, आपने पैसा लगाना है तो आप 9:15 बजे कोई ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, उसके पहले जो आप करते हैं वो वहां पर आपकी उसकी मान्यता नहीं होगी। वो मान्यता तब होगी कि अगर आप मान लीजिए कि मार्केट में एक रजिस्टर्ड ब्रोकर है या ब्रोकर के यहां आप रजिस्टर्ड सब ब्रोकर हैं, इस तरह की फैसिलिटीज में आप वहां पर करते हैं और वो भी उसका निपटारा उसी 15 मिनट के भीतर हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं।
Moving on, the global crude oil prices declined sharply yesterday as Iran said passage for all commercial vessels through the Strait of Hormuz was open for the remaining ceasefire period. On the other hand, US President Donald Trump said Iran has agreed to never close the strait again. Amid these developments, the Trump administration yesterday renewed a waiver allowing countries to purchase sanctioned Russian oil at sea for about a month. Reflecting the improved supply outlook, Brent crude futures yesterday settled over 9% lower at $90.38 per barrel. West Texas Intermediate crude futures tumbled over 11% to close at $83.85 per barrel. Over the week, Brent plunged more than 5% and WTI tanked almost 13.2%. Despite the easing of tensions, President Trump said that the American naval blockade of Iranian ports would continue until a comprehensive peace agreement is finalized with Tehran. Now, Shishir, all this, I read the figures tumbled and closed lower and all that. They are going to change the moment the news of Strait of Hormuz having been shut spreads wide and thin, then what are you expecting? How
see,
much?
Oil is very inflammable, what we say, and you just need a light, small light, and that light has
for
been...
For it to blast, huh?
That's my simple answer to
आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और बेंगलुरु से हम जोड़ रहे हैं अपने नए कॉलर को, इनका नाम है सुबोर्तो। कार्यक्रम में आपका अभिनंदन महोदय, अपना सवाल पूछिए।
गुड इवनिंग टू मार्टिन मंद्रेडी।
या गुड इवनिंग।
एक डिसीजन लेने में थोड़ा तकलीफ रहूंगी, इसके बारे में जानना है कि मुझे अभी लग रहा है कि फाइनेंस सेक्टर में कुछ शेयर ले, कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक ले लूं, 5 स्टॉक ले लूं, एनर्जी से 10 स्टॉक ले लूं, ऑटो से 5 ले लूं, या कंज्यूमर डिस्प्ले में से 10 ले लूं, ऐसा करके अगर मैं लगभग देखता हूँ कि 8 ऐसा स्टॉक है जो अच्छा लग रहा है, तो ये अलग अलग कंपनी का स्टॉक लेना अच्छा रहेगा या एक जो सेक्टर का ईटीएफ होता है एनर्जी ईटीएफ या ऑटो ईटीएफ ऐसा लेना अच्छा रहेगा? फ्यूचर में जब आप सेल करने जाएंगे तो क्या कुछ इसमें कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगा, ऐसा कौन सा डिसीजन अच्छा रहेगा? दिस इज माई क्वेश्चन।
देखिए, ये जो आपकी सोच है ना कि हम अलग अलग क्षेत्र की कंपनियों के शेयर में पैसा लगाए, बहुत अच्छी सोच है, जिसको हम लोग कहते हैं कि आप अपने जोखिम का विविधीकरण करते हैं, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए हैं और आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेना चाहते हैं, अलग अलग कंपनी के शेयर को लेना चाहते हैं, तो आप एक हिस्सा उसमें लगाइए जो आप 60 रुपए 70 रुपए तक कर सकते हैं, और बाकी 30 रुपए आप ईटीएफ में रख सकते हैं। और एक और बात मैं कहूंगा कि 60 रुपए एक बार में मत लगाइए, उसमें से 30 रुपया एक दिन लगाइए, फिर अगले दिन जब बाजार गिरे फिर आप 30 रुपया लगाइए, तो उससे आपको फायदा क्या होगा कि आपके उसी शेयर की लागत कम हो जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं एवरेजिंग। और इस एवरेजिंग का फायदा तब होगा कि जब आप उसे बेचने जाएंगे तो आपकी लागत कम है तो आपके लिए मुनाफा रहेगा। साल भर रोक करके रखिए तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएंगे, अगर शॉर्ट टर्म में जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपको टैक्स ज्यादा देना होगा।
गाजियाबाद की तरफ बढ़ते हैं, यहां से हमारे साथ जय कुमार जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में। महोदय, आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
I think we've lost touch with him. Joining us now from Delhi is Rohit. A warm welcome, Rohit. He's also known there. Prachi, what was the Sensex story?
बिल्कुल राजेश, अब आइए, हम सब जानते हैं कि इस सप्ताह में हमारे जो प्रमुख घरेलू सूचकांक हैं उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया। घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे सप्ताह तेजी देखी गई। पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव कम होने और तेल की कीमतों में नरमी आने से निवेशकों में उत्साह आया। इस कारण सभी क्षेत्रों में व्यापक खरीदारी हुई और इस सप्ताह भी तेजड़िए बाजार पर हावी रहे। सप्ताह के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 944 अंक बढ़कर 78,494, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 303 अंक बढ़कर 24,303 पर बंद हुआ, यानी कि दोनों ही सूचकांकों में 1% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं एनएससी के व्यापक बाजार ने प्रमुख सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया, जिसमें निफ्टी मिड कैप 100 सूचकांक 3.5% से अधिक और निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक 4.3% बढ़ा। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया सप्ताह के दौरान 20 पैसे कमजोर होकर अमरीकी डॉलर के मुकाबले 92.93 रुपए पर स्थिर रहा। मेहुल हमारे साथ श्रोताओं जुड़ रहे हैं मुंबई से, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
मेरा क्वेश्चन है कि बैंक एफडी में कितना इंटरेस्ट आता रहेगा, तो 15G यानी 121 अभी नहीं भरना पड़ेगा नॉर्मल सिटीजन के लिए, और कंपनी एफडी में कितना इंटरेस्ट आएगा तो 121 नहीं भरने का, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन सीनियर, ये दो क्वेश्चन
है। आपका दूसरा सवाल क्या था?
दूसरा सवाल तो हमें नहीं समझ आया, मगर
आप अगर दूसरा सवाल अभी है वो लाएंगे जी।
बैंक एफडी का इंटरेस्ट कितना आएगा साल का, तो 15G यानी 121 फॉर्म नंबर नहीं भरना पड़ेगा टीडीएस नहीं कटने के लिए, और ये दोनों सीनियर सिटीजन और नॉर्मल सिटीजन दोनों के लिए, और कंपनी एफडी में रिस्पेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कितना है, कितना इंटरेस्ट आएगा तब तक नहीं भरना पड़ेगा?
देखिए, बैंक एफडी की अगर हम लोग बात करें ना, तो अब वो सीमा अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो 50,000 रुपए की है, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो वो 1,00,000 रुपए तक की है, यानी कि इतने अगर आपके पास वो इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर आपको भरने की जरूरत नहीं है। रहा सवाल कॉरपोरेट जो आप डिपॉजिट्स करते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड्स में, अगर मैं आपके सवाल को समझ पाया, तो वहां पर जो सामान्य जो इनकम टैक्स की दरें होती हैं वो आपको लगेगा। हाँ, यदि आप 54C के बॉन्ड में अगर आप पैसा लगाते हैं, 54D या 54E के बॉन्ड में पैसा लगाते हैं जो कई पीएसयूज देती हैं, जिसको हम लोग कैपिटल गेन बॉन्ड्स कहते हैं, तो वहां पर आपके लिए अलग तरीके की छूट है। तो सामान्य परिस्थिति में जो आपने 15G को लेकर के पूछा था, वो 50,000 नॉन सीनियर सिटीजन और 1 लाख रुपीज 1,00,000 रुपया सीनियर सिटीजन के लिए।
मनीष जॉइन्स अस नाउ, with us.
Hello.
Manish from Delhi, please
जी,
ask your question.
नमस्कार, शिशिर जी को भी नमस्कार.
नमस्कार
जी. ऐसा है, मुझे दो प्रश्न है मेरा. एक तो कोई इमोवेबल प्रॉपर्टी आकर एनबीएफसी से फाइनेंस करके अगर किया जाता, मान लीजिए 20 लाख का या 22 लाख का, और 1.5-2 साल के अंदर उसको सेल किया जाता है 25 लाख का, तो प्रॉफिट तो 3 लाख का हुआ ना. तो उस हालत में ये जो कैपिटल गेन अकाउंट में ये प्रॉफिट का 3 लाख रखना पड़ता है या होल अमाउंट रखना पड़ता है, नंबर वन. नंबर टू, ये आपके ये जो है, एक सेकंड में, ये डाकखाने का जो एक स्कीम है आपका 15 लाख डिपॉजिट का, तो उसका आपका कोई लॉक इन पीरियड है और कितना साल के लिए रखना पड़ता है जो 10,000 हर महीना देते हैं, प्लीज इसका आंसर चाहिए.
मेरे ख्याल से जो तो आपने दूसरा प्रश्न पूछा वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड से जुड़ा हुआ था, अगर मैं समझ पा रहा हूँ, जहां पर जो है वो 15 साल का लॉक इन होता है. और बाकी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स की अगर आप बात करेंगे, जिसमें 15 लाख और कपल हैं तो 30 लाख रुपए तक की बात करें, उसमें लिए उसके लिए तो लॉक इन तो होता ही होता है. मैं आपको थोड़ी देर में उसका लॉक इन पीरियड भी बता पाऊंगा. पहला जो आपका प्रश्न था कि अगर आपने घर लिया है और उसमें आपने 3 साल के भीतर भीतर बेच दिया है, तो रकम तो आपको रखनी होगी, लेकिन टैक्सेशन की जो बात आती है ना, वो उस पैसे पे आती है, उस मुनाफे पे आती है, क्योंकि उसका नाम ही है कैपिटल गेन टैक्स. तो पूरी की पूरी रकम पे आपको नहीं लगेगा. लेकिन अगर आपने 3 साल के भीतर या फिर जो आपने पुराना घर बेचा उसके 1 साल के पहले अगर नए घर बनाने पे आप करते हैं और 3 साल के भीतर भीतर किसी नए प्रॉपर्टी में आप पैसा लगा देते हैं, तो फिर आपको टैक्स से जो कैपिटल गेन का जो बेनिफिट है वो आपको मिल सकता है.
Moving on, Wall Street ended higher yesterday after Iran declared the Strait of Hormuz completely open on the heels of a ceasefire announcement between Israel and Lebanon. The Dow Jones Industrial Average soared 1.8%, the Nasdaq Composite Index climbed over 1.5%, and the S&P 500 jumped 1.2%. The benchmark S&P 500 and the tech-heavy Nasdaq Composite each surged to record highs for a third consecutive session. For the week, all three major indices registered weekly gains. The Nasdaq zoomed 6.8%, S&P 500 gained 4.5%, and the Dow rose 3.2%.
भिलाई से हमारे साथ रवि जुड़ रहे हैं. रवि जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
नमस्ते पति जी और एक्सपर्ट को नमस्ते और राजेश जी को नमस्ते. मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले न्यूज सुन रहा था कि मैरीटाइम इंश्योरेंस के लिए जो है गवर्नमेंट ने कुछ बड़ा ह्यूज अमाउंट जो है ईयरमार्क किया है. नेचुरली वो हमारे पोर्ट से एक्सपोर्ट और हमारे पोर्ट्स पे इम्पोर्ट के लिए जो वेसल्स आएंगे उसके लिए है. तो मेरा प्रश्न ये कि मतलब ये इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री ऑफ ओरिजिन वेसल्स सभी के लिए है पहला, और दूसरा इस बड़े डिस्टेंस से हमारे इकोनॉमी को कैसे बूस्ट अप करेगा, ये मैं जानना चाहूंगा. एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कैसे बूस्ट अप करेगा ये जानना चाहूंगा.
इसके पहले जो पहला सवाल था जिसमें मैंने कहा था लॉक इन का आपको हम समय बताएंगे, तो वो पांच साल का वो लॉक इन होता है और टोटल आप इन्वेस्टमेंट उसमें 30 लाख रुपए कर सकते हैं. और इसके पहले
कंबाइंड
है, आप इंडिविजुअल वे में भी आप 30 लाख रुपए तक कर सकते हैं. और एक और बात जो महत्वपूर्ण थी कि जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट की बात, इंटरेस्ट पे टैक्सेशन की बात की थी, एक यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी कुल आय इनकम टैक्स स्लैब के थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, भले ही उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ. तो उनका प्रश्न ये था कि मुझे कितने में फॉर्म 15G नहीं देना होगा, तो वो आपके लिए 50,000 नॉन सीनियर और 1 लाख रुपया जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए. लेकिन अगर आपकी आय बढ़ जाती है तो फिर आपके लिए अलग मुद्दा बनेगा. अब इनका सवाल जो था वो था मैरीटाइम फंड को लेकर के, जो आज
हमारी एक स्टोरी भी है,
तो पहले हम स्टोरी सुन लेते हैं फिर हम उस पर जवाब देते हैं.
बिल्कुल श्रोताओं, आइए चलें जाने कि क्या है ये कहानी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत समुद्री बीमा पुल के गठन को मंजूरी दे दी. इस घरेलू बीमा पुल के लिए 12,980 करोड़ रुपए का एक सॉवरन गारंटी फंड बनाने का निर्णय किया गया। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि इस बीमा पुल से भारतीय ध्वज वाले जहाजों और भारत के नियंत्रण वाले जहाजों को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्रोत से भारतीय बंदरगाहों तक माल लाने और ले जाने के लिए किफायती बीमा की सुविधा सुनिश्चित होगी।
इसमें एक और मुद्दा है, इसमें तीन शर्तें हैं। पहली शर्त जो है कि वो इंडियन फ्लैग, दूसरी शर्त यह है कि भारत के नियंत्रण वाले, और तीसरा यह है कि यदि वो भारत से शुरू होता है या भारत आ रहा होता है, यानी कि ओरिजिन और डेस्टिनेशन, उनको भी ये फायदा मिलेगा। तो इसमें आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि अभी जो आप लंदन या स्विट्जरलैंड से जो आप इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस की बात करते हैं, वो आपके लिए भारत का भी होगा। इसमें 12,980 करोड़ का सॉवरेन गारंटी है और 930 करोड़ का जो है वो एक पुल है जिसके जरिए आपको पॉलिसी दी जाएगी। ठेठ भाषा में कहें तो उसे प्रीमियम आपको पे करना है, और उस 930 करोड़ रुपए में जो जनरल इंश्योरेंस है, जीईआरई जनरल इंश्योरेंस आरई जिसको हम लोग कहते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, बाकी अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज का कंट्रीब्यूशन होगा।
इस खबर को आगे बढ़ाते हुए मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की भी मंजूरी दे दी है। ये इस वर्ष 1 जनवरी से प्रभावी होगा। ये मूल वेतन या पेंशन के मौजूदा 58% की दर से 2% तक अधिक है ताकि मूल्य वृद्धि की भरपाई की जा सके। उन्होंने बताया कि इससे 50 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को भी लाभ होगा। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को मार्च 2025 के बाद मार्च 2028 तक जारी रखने की भी मंजूरी दी है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज 24,815 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली दो रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक गिर जाने के बाद एक दिन प्रधानमंत्री ये संबोधन कर रहे हैं।
We'll have last caller online with us, Prabhas Jha. Very, very briefly, Prabhas.
Hi, good evening, bye.
Please, very briefly come to your question.
Very briefly, yeah. ये सेबी ने अभी मेरा, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, सेबी ने अभी मेरे को कोई ऐसा रूल आया है जिसके अंदर मुझे आज एडहॉक मार्जिन मनी बोल के रिफंड कर दिया मेरे अकाउंट में, अमाउंट सब्सटेंशियल अमाउंट क्रेडिट कर दिया जो कि मेरा वहां पे रखा हुआ था। तो ऐसा कोई रूल आया है क्या कि आप, और लोगों से मैंने पता किया, उन लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ भी रिफंड आ गया, बट कॉज क्या है, कोई एडहॉक मार्जिन मनी बोल के वो बता रहे हैं।
देखिए, बाजार की परिस्थितियों के हिसाब से सेबी फैसले करता रहता है, और जिसका एक कहते हैं ना कि वो नोटिस टू बिजनेसेस या नोटिस टू जो रजिस्टर्ड एंटिटीज होते हैं उनको होता है। हो सकता है कि ऐसा कोई आदेश जारी किया गया होगा।
ओके, वेरी वेरी ब्रीफली शशित, इन 20 seconds, व्हाट्स योर टेक ऑन द कमिंग वीक?
Too much volatility in the stock market, that is what we are going to see. Some kind of rise in the oil prices, but the gold prices will be on the lower side.
निवेशकों के लिए एक आपकी तरफ से कोई संदेश?
बाजार में गिरावट जब भी आए, किस्तों में खरीदारी करिए।
शशि जी, कार्यक्रम में आने और चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद आपको हमारे तमाम श्रोताओं की तरफ से भी।
धन्यवाद।
थैंक यू शशि फॉर बीइंग विद अस, एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, Iran once again shuts the Strait of Hormuz in response to a U.S. blockade on Iranian ship and ports. Benchmark domestic indices wraps up weak with gains. Sensex and Nifty jumps over 1.2%. And major U.S. stock indices continue to hit record highs as investors see easing crude oil prices. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।